ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम आज के सुबह की प्रार्थना में श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय से सातवां श्लोक पढ़ने वाले। सब लोग मेरे बात दोहराइए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्तानाम धर्मस्य तदात्मानाम सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे। अर्थात हे भरतवंशी, हे अर्जुन, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। भक्तों का उद्धार करने और दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूं। हरे कृष्णा। तो आज के सभा में सबका स्वागत है, 8 फरवरी के प्रातः सभा में। तो आज वराह द्वादशी का दिन है, कल जया एकादशी था, और वैकुंठ के दरवाजे पर जय विजय ने इन दोनों द्वारपालों ने चार कुमारों को रोक दिया, क्योंकि चार कुमार बड़े उम्र वाले ऋषि थे, बहुत पुराने, लेकिन अपने योग बल से उन्होंने अपना शरीर 4 साल का रखा था ताकि इंद्रियों की जो वासनाएं हैं उनमें प्रवेश न करें। तो 4 साल के नग्न बालक जब वैकुंठ के द्वार पर आए तो उनको लगा इनका वैकुंठ में क्या काम है, उनको रोक लिया उन्होंने। लेकिन वो इतने शक्तिशाली ऋषि थे, उन्होंने जय विजय को शाप दे दिया कि तुम राक्षस बन जाओ, 3 जन्म के लिए राक्षस बन जाओ पृथ्वी पर जाकर। तब जोश होश में आया कि ये कौन है। तब तक विष्णु भगवान दौड़ के आए, कोई बात नहीं, ये हमारी लीला है, हमारी सेवा में आपको लगाएंगे, पृथ्वी पर जाना राक्षस बनना। तो पृथ्वी पर क्या हो रहा है, कश्यप मुनि के अनेक पत्नियां हैं, दीति है, अदिति है, दानु है, विनीता है, कद्रु है, ऐसे बहुत सारी पत्नियां हैं। उसमें से जो दीति नाम की पत्नी है, उसको एक दिन शाम के समय संधि काल के समय पति के साथ भोग करने की इच्छा होती है। तो कश्यप मुनि उनको कहते हैं कि ये समय सही नहीं है, ये अच्छी संतान प्राप्त करने के लिए समय नहीं है, यहाँ पर शिव जी के गण जो है वो घुमा करते हैं। फिर भी वो कामना इतनी तेज़ होती है ना, तो जब कामातुराणाम न भयम न लज्जा, जब काम वासना भड़क जाती है तो बुद्धि सबसे पहले भ्रष्ट हो जाती है, समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो कश्यप मुनि जैसे महान संत उनके पति है, उतना भाग्य है, समझा भी रहे हैं कि समय योग्य नहीं है, फिर भी वो उनकी धोती पकड़ के उनको खींचती है। और उस संबंध से जैसे होता है संबंध, तो कश्यप मुनि कहते हैं कि हमने कहा था आपको, जैसे ही गर्भधारणा हुई पृथ्वी पर भूकंप होने लगे, समुद्र में आंधी तूफान आने लगे, हाँ ऐसे भयंकर नैसर्गिक विपदा सब जगह दिखाई पड़ने लगी। इस संबंध से राक्षस पैदा होंगे। तो उस समय हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु का उसके बाद जन्म होता है, यथावकाश। आप जानते हैं इनका इतिहास भागवत में दिया है, इन्होंने मतलब हम लोग अभी आजकल सोचते हैं कि आतंकवाद फैल रहा है, सब जगह बम फट रहे हैं, पाकिस्तान में, लीबिया में, सीरिया में, इराक में, ईरान में, भारत में, सब जगह पर आतंकवाद हो रहा है। लेकिन ये आतंकवाद उस आतंकवाद के सामने कुछ भी नहीं है जो हिरण्याक्ष ने और हिरण्यकश्यपु ने यहाँ पर प्रस्तुत किया था। ये तो एक देश में, एक इलाके में, एक मीटिंग में, एक कंपनी में कहीं होता है। पूरे विश्व में, यूनिवर्स, जहाँ पर ब्रह्मांड है, सब जगह पर इनका आतंक था। इतना पावर था, उन्होंने इतनी तपस्या करके इतना बल प्राप्त किया था ब्रह्मा जी से कि 14 भुवन अपने काबू में किया था। यहाँ तक कि हिरण्याक्ष जो भाई है हिरण्यकशिपु का, इतना पावरफुल था, उसने पृथ्वी को एक गेंद की तरह लात मारकर समुद्र में फेंक दिया था। सोच सकते हैं कितना कितना भयंकर होगा वो, जो पृथ्वी को गेंद बनाकर लात मार सकता है वो कितना बड़ा होगा। वो भी गेंद को लात मारकर, जिसमें विष्णु विराजमान है, वो गर्भोदक सागर के तले भेज दिया उसको। पृथ्वी परेशान हो गई, भूमि देवी। फिर वो जब देवता के पास गई, ब्रह्मा जी के पास गई, सब देवता लोग उनको लेकर ब्रह्मा जी भगवान के पास गए। भगवान ने कहा कि हम आएंगे, जैसे प्रार्थना हो रही है कि भगवान त्राहि माम ना? बहुत इम्पोर्टेंट बात है, जब भक्त लोग को संकट आता है ना, तो माँ के पास, बहन के पास, भाई के पास नहीं भागते। जब भक्तों के जीवन में संकट आता है तो वो भगवान के पास ही भागते, क्योंकि एक ही सहारा है जो हमको हर प्रकार के संकट से बचा सकता है। हमको लगता है हमारा पैसा है, कॉन्टैक्ट है, फ्रेंड है, हमारा हॉस्पिटल है, वो डॉक्टर हमारे फ्रेंड है, तो हमारा संकट में सहारा होगा। लेकिन ऐसे ऐसे संकट आते हैं कि हमारे सारे सहारे हमारे आँखों के सामने यूजलेस होते हुए नज़र आते हैं। ऐसा गीत मुझे याद आता है वो, कि वो हमारी नाव जो थी, वो उस पर मुझे सहारा, भरोसा था मुझे, और किनारा भी बहुत पास था, लेकिन बीच में ही डूब गई वो। ऐसे गीत है फिल्मों का कि सहारा था लेकिन वो एन मौके पे डूब गया, हम भी डूब गए साथ में उसके। इसलिए सच्चा सहारा भगवान का है, और कोई सहारा नहीं है। सब में प्रेम रखो, विश्वास रखो, उनके साथ में अपने को रहना भी चाहिए, कर्तव्य के कारण, प्रेम के कारण रहते हैं। लेकिन सहारे का विश्वास जो है वो श्री जी और ठाकुर जी पर रखते हैं। तो भगवान के पास गए, भगवान ने कहा हम आएंगे, चिंता मत करना। तो ऐसे बोल रहे थे, उतने में ही ब्रह्मा जी के नाक में से एक अद्भुत जीव बाहर निकला, छोटा सा, जैसे आप कीटक समझ सकते हैं, इतना साइज का निकला। जैसे बाहर आ रहा था, एक एक लव के साथ, लव होता है ना, एक सेकंड का 12वां हिस्सा होता है, एक एक लव के साथ उसका आकार बढ़ रहा था, और कुछ ही पलों में ऐसा दिव्य आकार प्रकट हो गया, दिव्य महाकाय आकार। और वो क्या था? वराह भगवान, चतुर्भुज, हाथ में गदा चक्र धारण किए हुए, वराह का शरीर धारण किए हुए। वे वराह क्यों? क्योंकि जो वराह मतलब जो सुअर होता है ना, वो ही गंदगी में घुस सकता है, और कोई प्राणी इतना गंदगी में नहीं घुस सकता है। घुसते कुत्ते भी घुसते हैं, चूहे भी घुसते हैं, लेकिन सुअर इसमें गोल्ड मेडलिस्ट है। वो उनका अलग ही हिसाब होता है। तो पृथ्वी को समुद्र के तल से निकालने के लिए योग्य रूप में उन्होंने अपना अवतार लिया। जैसे अवतार लिया, ब्रह्मा ने वंदन किया, सबके सामने वो छलांग लगाई इस गर्भोदक सागर में, तले गए, अपने सिंगों के ऊपर पृथ्वी को धारण किया, और ऊपर आकर उन्होंने पृथ्वी को अपनी कक्षा में प्रस्थापित किया। सबसे पहले कंजर्वेटिव काम करना चाहिए, कभी भी डिस्ट्रक्टिव काम नहीं करना चाहिए। ये कितनी बड़ी समस्या हो गई ना, सबसे पहले क्या बोलते हैं कंजर्वेटिव को हिंदी में, बचाव काम करना चाहिए, संगठनात्मक काम करना चाहिए, जिसमें कुछ बने, बिगड़े नहीं, फिर बाद में कुछ तोड़ना है, कुछ उसको नष्ट करना है, वो बाद में करना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि चलो पहले हिरण्यक्ष को मार देते हैं, बाद में पृथ्वी को निकालते हैं। अरे मेरा भक्त परेशान है, पहले उसको बचाओ, बाद में राक्षस को मारते रहेंगे। भूमि देवी परेशान है, तड़प रही है, दम तोड़ रही है, सफोकेट हो रही है। तो अपनी कक्षा में रखा। वो जो संबंध था पृथ्वी का और भगवान का, उससे एक पुत्र प्राप्त हुआ, पुत्र का जन्म हुआ, उसका नाम था भौम। भूमि का पुत्र भौम, भगवान का पुत्र था वो, साक्षात भगवान का पुत्र। फिर भगवान ने पृथ्वी को अपने स्थान पर रखा, और फिर भगवान देखा कि कोई व्यक्ति ऐसा हिम्मत कर रहा है कि जिसको मैंने लात मार कर समुद्र के एक तले भेज दिया है, उसको कोई उठा कर रख सकता है? ऐसे किसकी हिम्मत हो सकती है इस ब्रह्मांड के अंदर? तो वो सामने आया, उसने ललकारा भगवान को, और उनका भयंकर युद्ध हुआ। उसमें एक बात हो गई कि उनका जो, जैसे योद्धा जब भिड़ते ना, तो वो ऐसे जोरदार डायलॉग मारते हैं, अरे कायर तू क्या लड़ेगा मुझसे, तेरे तो हाथ काट कर फेंक चुका हूँ मैं, ऐसे सब बात करते हैं। तो वो भी कुछ बोलता है, हाँ व्यर्थ बातें मत कर, बाणों से बातें कर, शस्त्र से बात कर, ये कविता करने की भूमि नहीं है, शस्त्र चलाने की भूमि है, ऐसे सब होता है। फिर युद्ध होता है, क्या उससे एक मूड बनता है। तो हिरण्याक्ष ने भगवान के लिए इतने अपशब्द उच्चारण किए कि भगवान कुछ समय के लिए डिप्रेस हो गए। भागवत में वर्णन आता है भगवान को बहुत बुरा लगा ऐसा सुनकर। क्या कारण है उसका? क्योंकि भगवान भी एक व्यक्ति है, उनको भी इमोशंस है, उनको भी भावना है, उनको भी दिल है, उसमें भी कुछ इच्छाएं हैं, कुछ लाइक्स हैं, डिसलाइक्स हैं, ये भूलना नहीं चाहिए। वो परम भगवान है, परम व्यक्ति है, वो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड है, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति है, डोंट फॉरगेट। हमारे गुरुदेव भी परमहंस है वो, लेकिन सबसे नीचे सबसे स्थायी रूप में वो व्यक्ति है, वो भूलना मत। फिर भगवान ने अपने आप को संवारा, क्योंकि वो अपने डिप्रेशन में कितने समय रहेंगे, तो कल्याण करने के लिए आएंगे। तो बहुत घनघोर युद्ध हुआ। अभी वो जिसने पृथ्वी को लात मारकर समुद्र में फेंक दिया, वो किस पर युद्ध करेंगे? वो हम लोग पृथ्वी पर युद्ध करते हैं, हमारा युद्ध भूमि जो है वो पृथ्वी होती है। तो अवकाश में युद्ध हुआ, स्पेस में। सारे देवता लोग जो है बादल में छुप छुप कर युद्ध को देख रहे हैं। अभी अगर भगवान आकर युद्ध कर रहे हैं तो हमको श्रद्धा होनी चाहिए ना, हमारा हीरो आ गया है, हमारा चैंपियन आ गया है, हमको डरने की बात क्या है, सब सामने आके युद्ध देख सकते हैं। तो छुप छुप के पहले रह रहे थे, अभी भगवान आ गए तो सामने खड़े। लेकिन उनको श्रद्धा नहीं थी कि ये युद्ध में कौन जीतेगा, भगवान जीतेंगे कि हिरण्याक्ष जीतेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देवता जो है ना अपने ऐश्वर्य में बहुत आसक्त होते हैं, इसलिए जितने फकीर बाबा के अंदर श्रद्धा होती है, विश्वास होता है, उतना देवता के अंदर नहीं होता है, क्योंकि उनको अपने भोग की चीज़ें निकल जाएंगे ऐसा एक डर रहता है। तो बादलों के अंदर छुप छुप के युद्ध देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? अगर हिरण्यक्ष जीत गया तो हमको देखना नहीं चाहिए कि हम देख रहे थे और भगवान जीतते तो बादल से बाहर आ जाएंगे, फिर तो छुप छुप के देख रहे हैं। बड़ा घनघोर युद्ध हो रहा है, कभी लग रहा है भगवान हार रहे हैं, कभी लग रहा है हिरण्यक्ष हार रहा है, कभी लगता है ये जीत रहे हैं, कभी ये जीत रहे हैं। भगवान कोई भी काम जो है ना बहुत सनसनीखेज करते हैं। अगर उनको अगर वो चाहते हैं तो वो क्या करेंगे, अपना चक्र जो है वो अंदर भेज देंगे उसके, और उसकी एक धमनी काट देंगे अंदर से। कोई खून खराबा नहीं, कुछ नहीं, युद्ध नहीं, कुछ नहीं। अरे लेकिन ऐसा करेंगे तो हम लोग क्या बात करेंगे फिर हमारे लिए वर्णन करने के लिए क्या है? इसलिए भगवान इतना सारा लीला करते हैं। कभी लगता है ये हार रहे, कभी ये हार रहे, कभी ये जीत रहे, एंग्जाइटी, हाँ ये सब करने के बाद भगवान फिर हिरण्यक्ष का वध कर देते। हिरण्यक्ष का वध करने के पश्चात सब देवता लोग बादल से बाहर आ जाते हैं, भगवान का जय जयकार करते हैं, भगवान पर पुष्प वृष्टि करते हैं। इतना सुंदर लीला है। हमेशा जो राक्षसी भाव है, हाँ जो गलत भाव है, अपराधी पापी भाव है, उसके उसका वध करते हैं भगवान, उसको नष्ट कर देते हैं, और सत्य को स्थापन करते हैं, प्रेम को स्थापन करते हैं, भक्त को स्थापन करते हैं, भक्ति को स्थापन करते हैं। तो फिर उसके बाद में भगवान थक गए। भगवान कहाँ पर आए? मथुरा मंडल में आए, ब्रज में आए वराह भगवान। इसलिए आज भी मथुरा मंडल में श्वेत वराह और रक्त वराह के दो मंदिर है द्वारका, द्वारका मथुरा में बहुत प्रसिद्ध हैं। और जो विश्राम घाट है, यमुना किनारा है मथुरा में, वहाँ पर भगवान ने विश्राम किया है। थक गए थे वो, विश्राम फरमा रहे थे। तो उस समय कृतज्ञ भाव से भूमि देवी, पृथ्वी देवी जो है वो देवी बनकर भगवान के सामने आई, और भगवान का उन्होंने गौरव किया है। और फिर भगवान ने कहा है कि जिस जिस जगह पर आप खड़ी हो और जहाँ मैं विश्राम फरमा रहा हूँ, ये भगवान मतलब मेरा दिव्य धाम है, ये मेरी चिरंतन लीला स्थली है, इसमें मैं द्वापर में आऊँगा और लीला करूँगा। तो भूमि देवी ने बड़े उत्सुकता से उनको प्रश्न पूछा कि क्या है ये भूमि, मुझे इसका गौरव सुना दो। तो भगवान ने एक एक स्थान का गौरव किया है, ब्रज का, और उसका जो शास्त्र निकला उसका उसका नाम क्या है? वराह पुराण। वराह पुराण वो वार्तालाप है भगवान वराह देव और भूमि देवी का, जिसमें हर एक क्षेत्र का भगवान ने दिव्य लीलाओं का वर्णन किया है। उसमें आपको काम्यवन का वर्णन मिलेगा, अद्भुत वर्णन है उसके अंदर, जगह जगह चप्पे चप्पे का वर्णन है। उसमें एक एक वर्णन आता है कि ब्रज में 66 अब्ज पवित्र स्थान है, ऐसा उन्होंने वर्णन किया। 66 अब्ज 66 बिलियन होली प्लेसेस, कण कण में यहाँ पर लीला है भगवान की। और मेरे ख्याल से 66 अब्ज भी कम होंगे शायद, कण कण में लीला होगी तो कण कितने हैं इधर, कोई गिनती कर सकता है? ऐसे अनंत लीलाओं का कुछ हिस्सा उन्होंने भूमि देवी को वर्णन किया। फिर भगवान हमारे हॉस्पिस के सामने आए, मतलब हम भगवान के सली के सामने आए बाद में। यमुना किनारा जो है वो सबसे क्या कहते हैं उसको, बड़ा आश्रय है सबके लिए, द बिगेस्ट शेल्टर। सारे दुखों दुख दर्द वहाँ मिट जाते हैं, सारे कष्ट, सारे डर, सारा जो भय है वो वहाँ पर मुक्त हो जाता है। यमुना किनारा, यमुना की रज जो है वो सबको मोक्ष दिलाने वाली है, सबको प्रेम और भक्ति देने वाली है। तो हमारा आज जो हॉस्पिटल, हमारा हॉस्पिस भक्ति वेदांता हॉस्पिस वृंदावन में है, वो आदिवारा घाट के सामने है, वारा घाट कहते हैं उसको, जहाँ पर भी बारा भगवान आए हैं। वो कहते हैं उन्होंने वहाँ पर अपने हाथ पैर प्रक्षालन भी किया है। तो ऐसे वरा भगवान का आज आविर्भाव दिवस है, जो भी हमने आपको बताया संक्षेप में वो सब आज के दिन हुआ है। आज के दिन वो घनघोर युद्ध अवकाश में हुआ है, आज के दिन पृथ्वी को भगवान ने अपने कक्षा में रखा है। तो भगवान, हमने श्लोक क्या लिया था, यदा यदा ही धर्मस्य, जब भी ये अधर्म मचता है, बढ़ जाता है और धर्म की ग्लानी होती है तो भभगवान आ जाते हैं। तो ये हिरण्याक्ष ने क्या किया था, सारे पृथ्वी का जितना भी धर्म का कार्य सब बंद कर दिया था और अधर्म का कार्य को प्रोत्साहन दिया था। सारे पूजा पाठ ऋषियों को क्या मराठी में कहते हैं मुस्कट दाबी, मतलब दबा कर रखा था, कुछ नहीं करना है, मेरा नाम लेना है बस खाली। सब देवताओं को भगा दिया था, सब देवता लोग गुफाओं में छुपे थे अपने अपने राज्य को छोड़कर। तो भगवान आए, फिर सबको प्रस्थापित किया उन्होंने। फिर उसके बाद में हिरण्यकश्यप की कहानी है। हिरण्यकश्यप को बड़ा गुस्सा आता है, वो हिरण्याक्ष की पत्नी को जाकर सांत्वना देता है, बड़े बड़े दार्शनिक बातें करता है, फिलोसॉफिकल। आप पढ़ेंगे लगेगा कोई संत बात कर रहे हैं, बाद में पता चलेगा अरे ये तो हिरण्याक्ष बात कर रहे हैं, हिरण्यकश्यप बात कर रहे हैं। तो मुझे आपको एक और बात बतानी है कि भगवान कैसे निपक्षपाती है। समस्त सर्वेश भूतेषु मद भक्ते लभ परम, समस्त सर्वेश भूतेषु मतलब सब जीव के लिए वो समान है। क्या राक्षस उनके अंश नहीं है? वो कहते हैं ममय वांछो जीव लोके जीव भूत सनातन, तो राक्षस भी उसमें आते हैं, वो भी उनके अंश हैं, वो भी उनके पुत्र हैं, जैसे हम पुत्र हैं वो भी उनके में पुत्र हैं। और सबके लिए भगवान जो पिता होता है वो अपने सब पुत्रों के लिए समान होता है। तो दुष्टों को दंड देना भगवान का काम है, भक्तों को सहारा देना उनका काम है। तो ये नहीं देखते कि जो भक्त जो है वो एक देवताओं के वंश में होने चाहिए, ऐसा नहीं है। विभीषण तो राक्षस वंश में था, रावण का भाई था, वो पूरा रावण की सत्ता थी लंका के अंदर। लेकिन विभीषण रावण के वंश में, राक्षस के वंश में होने पर भी वैष्णव था और भगवान ने उसको बचाया है ना। प्रहलाद भी राक्षस के वंश में, हिरण्यकश्यप का पुत्र था वो, लेकिन वो महान वैष्णव बना, राक्षस के कोख में जन्म लिया उसने। फिर भगवान ने उसको बचाने के लिए उसके पिताजी को मार डाला। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो भूमि देवी और हिरण्याक्ष का पुत्र है भौम, बड़ा भाग्यवान जीव है वो, माता भी भक्त हैं, श्रीदेवी भूदेवी में से भूदेवी एक है भगवान की पत्नी, और पिता भगवान है, तो उसको कितना महान होना चाहिए था हमारे विचार से। जैसे हमारे यहाँ पर कैसे होता है, अगर माता पिता वैष्णव है और माता पिता वैष्णव होने के बाद, दीक्षा होने के बाद उनका विवाह होता है और जब उनको पुत्र प्राप्ति होती है तो वो बहुत भाग्यवान मानते हैं उसको, अरे कोख से ही उसको संग मिल रहा है माता पिता का, तो उसको महान भक्त होना ही है। लेकिन कभी कभी पासे उल्टे पड़ जाते हैं और फिर वो जो है वो अलग गलत काम करता है बच्चा भक्त होने पर भी। तो ये भौम जो था वो बाणासुर के संग में आ गया। बाणासुर में कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, प्रहलाद के वंश में है वो, प्रहलाद का ग्रैंड सन है वो, तो उसको भी बड़ा भक्त बनना चाहिए था, लेकिन वो राक्षस बना, बाण था वो बाणासुर बन गया, और बाणासुर के संग के वजह से भौम का भी भौमासुर हो गया, और एक और नाम नरकासुर है उसका। प्राग ज्योतिषपुर यानी कि आसाम गुवाहाटी के पास उसकी राजधानी थी, और उसका इतना आतंक था कि उसने जरासंध के साथ फ्रेंडशिप कर लिया, कंस के साथ फ्रेंडशिप कर लिया, ऐसा एक गठबंधन बना लिया, महान राक्षसी गठबंधन मरागम। महान राक्षसी गठबंधन कैसे, कंस वहां दिग्विजय करने आया था, एक एक करके सबको हरा रहा था, सबको अपने अपने दोस्ती में ला रहा था। तो नरकासुर देख रहा था, कह रहे ये तो उसने कोल्या पीड़ को उठा के फेंक दिया। बाप रे, कोल्या पीड़ को उठा के फेंकने की शक्ति किसमें हो सकती है? तो झट से आके अपनी दो कन्याओं को लेके बोला, इस पे चैलेंज नहीं करना है, दो कन्याओं को दे दो, इनसे फ्रेंडशिप बना दो, रिश्ता बना दो, जमाई बना दो, अपना हो जाएगा ये। फिर आगे बढ़ा वो कंस, तो पहले बकासुर आया तो उसको परास्त कर दिया, फिर अघासुर आया उसको परास्त कर दिया, फिर नरकासुर ने पुतना को भेजा तो बोला, अरे औरत आ गई तो मैंने औरत से युद्ध नहीं करता, तो मेरी बहन बन जा, तो सब गठबंधन बन गया। फिर नरकासुर ने युद्ध नहीं किया, बोला तो हम लोग सब लोग फ्रेंड है, चल अपन गले मिलो, हम लोग गठबंधन बनाएंगे। तो ये प्राग ज्योतिषपुर उन्होंने क्या किया, फिर इतना पावर बढ़ गया, तो इतना गर्व हो गया, इतना आतंकवादी हो गया वो, कि वो इंद्र के माँ के कुंडल चुराए। सोच सकते हैं आप, इंद्र के माँ के कुंडल कितने वैल्यूबल होते हैं। वो इंद्र को परास्त करके चुरा लिए, वायु लोक में गए उसका छत्र चुरा लिया, वरुण लोक में गए उसका सिंहासन चुरा लिया। मतलब ये एक एक लोक के एक एक विशेष चीज़ें हैं जो स्पेशलाइज्ड, कि वायु की छत्री यानी वायु की छत्री, वो किसके पास नहीं, ये सब चुरा के बैठ गए वो। तो देवता लोग परेशान हो गए, भगवान के पास आए, जब भगवान लीला कर रहे थे द्वापर में, भगवान बचा लो, हमारा तो सब कुछ छीना जा रहा है। भगवान ने कहा ठीक है, भगवान प्राग ज्योतिषपुर गए और उन्होंने नरकासुर का वध कर दिया। इसका बड़ा वर्णन है कैसे घनघोर युद्ध हुआ उनका। मैं ये क्या बताना चाहता हूँ, कौन सा मुद्दा बताना चाहता हूँ, कि भगवान अपने बच्चे को भी नहीं छोड़ते हैं अगर वो राक्षस बनता है, धर्म के विरुद्ध कार्य करता है। और अगर राक्षस वंश का बालक अगर भक्त बनता है तो उसको बचाते हैं, ये उनकी समानता है। भक्त को वो भक्ति से मी सखा चेती रहस्य देत उत्तमम, कह रहे हैं वो कि मैं आपको ये गीता बता रहा हूँ अर्जुन, तो कोई आप मेरे भक्त हो, मतलब आपको लग रहा है कि पार्शलिटी कर रहे हैं ना वो, नहीं उनकी समानता कैसी है, अगर राक्षस भी भक्त बनता है तो उसका भी वो बचाते हैं, उसको रक्षा करते हैं, और खुद का पुत्र भी अगर राक्षस बनता है तो उसको मारने में वो हचकिचाते नहीं, ऐसे हमारे भगवान हैं। ही इज अ रियल एडमिनिस्ट्रेटर, रियल एग्जाम्पल। उनके व्यवहार में कभी कभी विरोधाभास दिखता है, लेकिन उसमें एक धागा होता है सत्य के और धर्म के आधार पर। भगवान का व्यवहार जो है वो समझने के लिए मुश्किल होता है, लेकिन वो धर्म के आधार पर, सत्य के ऊपर आधारित होता है। तो ऐसे वरादेव स्वयं के पुत्र को भगवान ने अपने हाथों से मार दिया, देवताओं को छत्र सिंहासन सब लौटा दिया, इंद्र के माँ का कुंडल लौटा दिया, अदिति के जाके खुद हाथ से जाके दे के आए, सत्य मामा को लेकर लौटा के आए। तो ऐसे भगवान हमारे पूजनीय वंदनीय, जिनकी चाकरी करने में बड़ा आनंद है, बड़ा गर्व है, ऐसे भगवान हमारे, उनका वरादेव का अवतार जब हुआ वो आज उनका दिन है जिस दिन उन्होंने अवतार लिया। बोलो वराह भगवान की, श्री आदि वराह पुराण की, भूमि देवी की, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम।